ओम शांति। योग के सुंदर प्रवाह में आप सभी प्रवाहित हो रहे थे। योग की जो गहनता है, उस गहनता को और गहनता की ओर इस एक्टिविटी के साथ हम लिए चलेंगे। इसीलिए योग युक्त तो होकर के ही बैठे, क्योंकि योग हम लगाते किसके साथ हैं, किसके साथ लगाते हैं? बाबा के साथ। बाबा के सुंदर महावाक्य, बाबा की सुंदर शिक्षाएं, बाबा की प्रेरणाएं हमें योग युक्त तो होने में मदद करती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, योग उनका सहज हो जाता है जो भगवान के आज्ञाकारी होते हैं। दुनिया में भी एक बात कही जाती है कि तुम भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की मानते हो? हम भी बाबा को तो मानते हैं, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, है ना? सारे दिन मेरा बाबा के गीत गाते हैं ना? बाबा बहुत खुश होते हैं, बच्चे गीत गा रहे हैं। लेकिन बाबा की खुशी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो आनंद के सागर हैं, उनकी खुशी कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन यदि हम उनकी मानेंगे, उनकी शिक्षाओं को जीवन में लाएंगे, तो हम उनकी दुआओं के पात्र बन जाएंगे। सहज ही उनकी दृष्टि हमारी ओर आ जाएगी। और इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ी प्राप्ति और कुछ नहीं है। दादी जानकी जी हमेशा कहा करते थे कि मुझसे मैं ऐसा कर्म करूं जो भगवान की दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर रहे। मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो कि भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर से हट जाए, क्योंकि उसके लिए तो इतने सारे हैं, अनेक हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो एक ही है ना? तो उसकी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, उसकी दुआएं मुझे प्राप्त होती रहें, इससे बड़ी प्राप्ति और कुछ नहीं। और उसका सबसे सहज साधन है, भगवान ने जो कहा, उन्होंने जो आज्ञाएं दी, जो शिक्षाएं दी, उन्हें हम अपने जीवन में उतारें। तो इस पूरे सीजन में, अब हम अगले सीजन की ओर बढ़ रहे हैं, 31st बाबा की प्रथम पधरामणि होगी। हम अगस्त में आ ही गए हैं, सितंबर अक्टूबर दो मास। बाबा ने पिछले सीजन में जो होमवर्क दिया था हमें, किस किस को याद है? हमारे सुप्रीम टीचर ने हमें 10 मुरलियों में अनेक होमवर्क दिए थे कि बच्चे ये करना है, ये करना है ना? अब हमारा ध्यान उन होमवर्क पे कितना था? खैर, बाबा की रोज मुरलियां आती हैं, साकार मुरली होती है, संडे की अव्यक्त मुरली होती है, बहुत सारी और सेवाओं के ग्रुप्स से हम जुड़े हुए होते हैं, तो अलग अलग प्रवाह होता है। लेकिन इस सीजन में, अर्थात पिछले सीजन में जो बाबा ने होमवर्क दिए थे, आज कुछ एक्टिविटीज के थ्रू बहुत सहजता से हम उन्हें याद भी करेंगे और अगले बाबा के आने तक हम इन्हें रिवाइज करते रहेंगे। रोज बहुत इजीली आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए इसे 10 धामों में बांटा है। वैसे तो भक्ति में हम 4 धाम की यात्रा करते थे, अभी भी हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, है ना? लेकिन आज हम 10 धामों की यात्रा करेंगे, ठीक है, जिससे बहुत सहजता से हम बाबा को याद कर सकें और बाबा के होमवर्क को भी हम याद कर सकें। रेडी हैं यात्रा के लिए? सब तैयार हैं? तैयार हैं ना? तो मानसिक यात्रा पर चलेंगे। पूरी तरह एकाग्र होकर के हम बैठेंगे, अपने मन बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र, बाबा से दृष्टि लेते हुए पहुंच जाए डायमंड हॉल में। वो डायमंड हॉल जहां वर्षों तक प्यारे बाप दादा ने आकर ज्ञान की वर्षा की, अपनी नजर से सबको निहाल किया, ज्ञान रत्नों से अपने बच्चों का श्रृंगार किया। पहुंच जाए डायमंड हॉल में, देखें बाप दादा सम्मुख, मेरे परम शिक्षक, अपने गॉडली स्टूडेंट्स के सामने। अपनी शक्तिशाली दृष्टि से निहाल करते हुए मन में सुंदर भाव के साथ बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेंगे कि मैं अपने सुप्रीम टीचर के हर होमवर्क को 100% करूंगा। बाबा आपने जो शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में उतारूंगा। आपकी आश पूर्ण करूंगा। इस सुंदर भाव के साथ बाबा से दृष्टि लेते चलते हैं हम पहली मुरली की ओर। बाबा की पहली मुरली, बाबा का होमवर्क, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। बहुत सुंदर और गहरी बात, बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? किस किस का लक्ष्य है बाप को प्रत्यक्ष करना, जरा हाथ उठाएं। बाबा को प्रत्यक्ष करना हम सबका लक्ष्य है, तो क्या करना है उसके लिए? बाबा ने कहा सदा क्या हो? मुस्कुराता हुआ चेहरा। कैसा चेहरा ना हो? चिंतन में, उलझन में, परेशानियों में, दुविधाओं में ऐसा चेहरा ना हो, चेहरे में 12 ना बजा हो। तो कहते हैं ना, इसके चेहरे में तो 12 बजे हुए हैं, हवाइयां उड़ रही हैं। यदि मैं दुखी होकर किसी को कहूं, परेशानियों में घिरा हुआ चेहरा लिए हुए किसी से कहूं कि चलो मैं आपको बाबा से मिलाता हूं, भगवान आए हैं इस धरती पर, चलो मैं भगवान से आपको मिलाता हूं, तो वो मानेगा? कहेगा आपके चेहरे को देख करके तो ऐसा लगता नहीं कि आपको भगवान मिल गए हैं, मानेगा? मानेगा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा पहला होमवर्क, बाप को प्रत्यक्ष करना है तो सदा सदा कैसा चेहरा? मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाबा के चेहरे को देखें, बाबा का चेहरा कैसा है? ऑलवेज स्माइलिंग, है ना, ऑलवेज स्माइलिंग। सारे संसार का कर्ता धरता, सारे संसार के बोझ को उठाने वाला, सारे संसार का तारणहार, लेकिन कितना हल्का ना, हमेशा मुस्कुराते। तो हमें बाबा को देखकर डायमंड हॉल में संकल्प कर लें, मुझे भी सदा मुस्कुराते रहना है, राइट? एक दूसरे को देखें मुस्कान भरी दृष्टि से, मुस्कुराते हुए देखें एक दूसरे को, एक दूसरे को मुस्कान के साथ देखें। देखा सबने ऐसी मुस्कान, सबके चेहरे पे मुस्कान आए, आपके पड़ोसी के चेहरे पे मुस्कान आए, ना आई हो तो उनको गुदगुदी कीजिए कि मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। ओके, फर्स्ट होमवर्क क्या करना है? मुस्कुराते हुए चेहरे से बाबा की सेवा करनी है, जिसको बाबा कहते हैं अपने चलन और चेहरे से सेवा करो। ओके, सेकेंड मुरली, यात्रा करते चलेंगे। डायमंड हॉल से निकलकर हम अगले धाम की ओर चलेंगे, लेकिन सेकेंड मुरली जिसमें बाबा ने हमें होमवर्क दिया, बच्चे मन जीत जगत जीत अवश्य बनना है। मन जीत जगत जीत बनना है, मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल करके मन जीत बनना ही है। हम सबका लक्ष्य है जगत जीत बनना, हम सबका लक्ष्य है विश्व पर राज्य करना, है ना? जगत जीत बनना चाहते हैं ना, जगत पर राज्य करना चाहते हैं ना, तो उसकी शर्त क्या है? मन जीत। तो बाबा ने कहा मन जीत बनना ही है। अब अपनी चेकिंग कर लें, मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाता हूं? सारे दिन में कैसी अवस्था रहती है? योग में भी मैं बैठता हूं तो मन दिल्ली चला जाता है, अपने घर में चला जाता है, अपने व्यवसाय में चला जाता है, फिर मैं खींच के उसको लेके आता हूं। या फिर मन को जो संकल्प दिया जा रहा है मंच से, मन को जो संकल्प मैं खुद दे रहा हूं राजा बनकर, उस संकल्प को कितना अमल में लाता है चेक करना है। जितने अभी मन जीत बनेंगे उसी अनुपात में जगत जीत बनेंगे, जितने अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उसी आधार पे विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा ने सीधा सीधा हमें इक्वेशन दिया है, जितने स्वराज्य अधिकारी उतने विश्व राज्य अधिकारी, और इससे भी एक कदम और आगे, जितने लंबे काल के स्वराज्य अधिकारी उतने लंबे काल के विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए ये ना सोचें कि मन कभी कभी तो धोखा देता है, मन कभी कभी तो चलायमान होता है, मैं अंत में मन को पूरी तरह जीत लूंगा। अंत में यदि मन जीत बनेंगे तो अंत में अर्थात त्रेता अंत में राज्य मिलेगा। कौन कौन श्री सीता और श्री राम बनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। श्री सीता, अच्छा राम जी तो सामने दिख गए एक, सीता जी भी कोई है? नहीं ना, ठीक है। तो हम सबका लक्ष्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है ना, प्रथम जन्म में आना है, राइट? तो क्या करना होगा? अभी से स्वराज्य अधिकारी चलें दूसरे धाम में। डायमंड हॉल से बाबा से मुस्कान लेकर, हमेशा मुस्काने का संकल्प लेकर हम चलते हैं प्रकाश स्तंभ में। देखें प्रकाश स्तंभ में दादी का मास है, दादी खड़ी हैं, प्यार से हमारा आह्वान कर रही हैं, और दादी के हाथ में एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते पे लिखा हुआ है मन जीत जगत जीत भव। पहुंच जाए दादी के पास, दादी वो गुलदस्ता मुझे दे रही हैं दृष्टि देते हुए, प्यार से अपने गले लगा रही हैं। इस दृश्य को देखें, और प्यार से वो गुलदस्ता देकर मुझे दृष्टि देते हुए दादी कह रही हैं मन जीत जगत जीत भव। उस गुलदस्ते पे एक बहुत प्यारा सा ब्लेसिंग कार्ड चमकीला सा लगा हुआ है, जिस पे ये ब्लेसिंग लिखी हुई है जिसे मैं देख रहा हूं देख रही हूं। आत्मसात कर लें उसे, व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त, मैं मन का राजा हूं, मन जीत। संकल्प कर लें दादी के सम्मुख, मुझे मन जीत बनना ही है। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से मुक्त, दादी के मास में दादी से मिलन मनाते हुए, दादी से हम एक वायदा कर रहे हैं कि दादी जैसे आप मन जीत जगत जीत बने, हम भी मंजीत अवश्य बनेंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। दादी से गुलदस्ता लेकर तीसरी मुरली, जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो, हद के बंधनों से मुक्त बनो। ये तीसरा होमवर्क बाबा का। चलें, कौन सा स्तंभ है ये? शक्ति स्तंभ, हमारा तीसरा धाम। तीसरे धाम में पहुंच जाएं, शक्ति स्तंभ देखें दादी जान की जी, वहां रक्षा सूत्र लेकर हम सबके आह्वान करते हुए बैठी हुई हैं कि मैं सबको बंधन में बांधूंगी। पहुंच जाएं दादी के सम्मुख, दादी दृष्टि देते हुए हमें रक्षा सूत्र बांध रही हैं, रक्षाबंधन का पर्व। और इस बंधन में बांधते हुए हमें एक संकल्प करा रही हैं, एक के बंधन में बंधना है और सर्व बंधनों से मुक्त होना है। सर्व हद के बंधनों से मुक्त, संकल्प कर लें दादी के सम्मुख, मुझे एक बाबा के बंधन में बंधकर सर्व हद के बंधनों से मुक्त होना है। जैसे दादी सारे यज्ञ को संभालते हुए निर्बंधन थी ना, कोई चाबी अपने पास नहीं रखते थे, ना घड़ी पहनते थे, ना पर्स अपने पास रखते थे, सब बंधनों से, सूक्ष्म स्थूल बंधनों से मुक्त। और बाबा ने निशानी क्या बताया इसका, जो सर्व बंधनों से मुक्त होंगे वो एक सेकेंड का ऑर्डर हो कि अशरीरी बन जाओ तो बन जाएंगे, युद्ध नहीं करने पड़ेंगे। तो चलें एक सेकेंड में बिल्कुल अशरीरी हो जाए, कोई युद्ध नहीं, मैं आत्मा भृगुटी तख्त पर अशरीरी। चेक करें क्या हम बिल्कुल अशरीरी हो पाए, विदेही जनक की तरह क्या बिल्कुल विदेही बन पाए, जहां कहीं भी हमारे संकल्प जाते हैं अर्थात हम बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन को हमें हल्का करना है। योग में बैठे और संकल्प का कहीं जाना अर्थात वहां हम सूक्ष्म रूप से बंधे हैं, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, हमारा पास्ट है, फ्यूचर है, कोई बात है। तो तीसरा धाम शक्ति स्तंभ, जहां हमने क्या लिया होमवर्क, सब हद के बंधनों से मुक्त। सूक्ष्म चेकिंग अपनी अवश्य करेंगे, अभी वक्त नहीं है, लेकिन सभी अपनी चेकिंग फिर से इन धामों की यात्रा करते हुए जरूर करेंगे, क्या मैं कहीं बंधा हुआ हूं या मुक्त हूं, चलने को तैयार हूं, बाबा कहे चलो बच्चे तो क्या मैं चल सकता हूं, ऐसा एवर रेडी मुझे बनना है। फोर्थ मुरली, बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो, सबसे सहज पुरुषार्थ। यदि कुछ और नहीं भी हो पा रहा है तो बाबा ने कहा सबसे इजी, सबसे सहज, सबको दुआएं दो और सबसे दुआएं लो, सुख दो सुख लो, किसी को भी ना दुख दो ना दुख लो। तो दुआएं देना लेना सबसे सहज पुरुषार्थ जिसे बाबा ने कहा करो। चलें चौथे धाम की ओर, हमारा चौथा धाम कौन सा धाम है ये, अव्यक्त लोक। पहुंच जाएं अव्यक्त लोक में अपने मन बुद्धि से, देखें वहां दादी गुलजार जी हम सबको बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें दुआएं दे रही हैं। खुश रहो, सदा आगे बढ़ते रहो, अमर रहो, निर्विघ्न रहो, बाबा के राइट हैंड बनो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, दिव्य पुरुषार्थ करो। दिल से दादी हमें दुआएं दे रही हैं। देखें अव्यक्त लोक में दादी की गोद में हम समा जाएं, कितना अलौकिक अनुभव, बाबा का रथ छोटा नंदे। हमारे सिर पर हाथ रख के हमें दुआएं दे रही हैं, उनकी दुआओं से मैं संपन्न हो रही हूं, हल्की हो रही हूं, आनंदित हो रही हूं। सदा खुश रहो, दादी के स्पर्श से ही मन मस्तिष्क बिल्कुल शीतल हो रहा है। तो दादी से दुआएं लेकर अब क्या करना है? दादी ने कहा दुआएं लो और दुआएं दो। तो अब एक एक पेयर बना लेंगे और एक दूसरे को दुआ देंगे। पेयर बना लें, जैसे दादी ने आपको दुआएं दी, आप अपने साथी को दुआएं देंगे। दिल से दुआ दीजिए। दृष्टि से ही नहीं लेकिन वाणी से आप हमेशा हल्के रहो, हमेशा उड़ते रहो, बाप समान बन जाओ, आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं, आप निर्विघ्न हो जाओ। दिल से दुआएं दें, वाणी से दुआएं दें, बोलकर दुआएं दें। दी सभी ने दुआएं, सबने दुआएं दी, दुआएं ली भी, दुआओं का स्टॉक है ना, भरपूर है। यदि आपको कहें कि आप दुआएं देते रहो आधे घंटे तक तो दे सकते हैं। कौन कौन दे सकता है? अरे वाह, बहुत सुंदर, स्टॉक जमा है। तो जब भी एक दूसरे से मिलें, वाणी से एक दूसरे को क्या देंगे? दुआएं देंगे। आप खुश रहो, हल्के रहो, उड़ते रहो, बाबा की याद में मस्त रहो, एक दूसरे को दिल से, मन से भी और साथ ही साथ वाणी से भी हम एक दूसरे को दुआएं दें। तो हमारा चौथा होमवर्क क्या? सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। यदि आप दुआएं देंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपको क्या देगा? दुआ ही देगा ना। यदि आप अच्छा अच्छा बोलेंगे सामने वाले को तो सामने वाला आपके लिए बुरा तो नहीं बोलेगा ना, राइट? आप कहेंगे आप खुश रहो तो सामने वाला भी आपको क्या कहेगा? आप भी खुश रहो। आप निर्विघ्न रहो कहेंगे तो वो भी आपको कहेगा निर्विघ्न रहो। तो ये दुआओं की लेन देन हमारी पुरुषार्थ को सहज करेगा। और यदि कोई बद्दुआ दे तो भी दुआएं देंगे, दे सकते हैं ना। कोई बहुत आपको बद्दुआ देता हो, रात दिन आपको कर्ज करता हो कि जा तेरा ये हो जाए वो हो जाए, होता है ना, हर एक के साथ एक ना एक लगा रहता है, टांग खींचने वाला, परेशान करने वाला, अड़चन डालने वाला, होता है या नहीं? और कई बार हमारे अंदर से निकलता है बाबा ये ठीक हो जाए बस, हा? या तो इसे ठीक कर दो या फिर अपनी शरण में ले लो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए पुरुषार्थ का। तो आपकी मनोकामना पूरी होगी? नहीं। बाबा ने कहा यदि कोई बद्दुआ देने वाला भी हो तो क्या करो? 10 गुना ज्यादा उसको दुआएं दो। ये हमें श्रीमत है, वो हमारा परीक्षक है, वो परीक्षा ले रहा है कि हम कितने परिपक्व हुए, हमारे दुआओं का स्टॉक कितना है, हम कहीं नेगेटिव तो नहीं हो जाते, वो परीक्षा ले रहा है, तो हमें क्या करना है, दिल से सबको दुआएं देनी है। चलें, फिफ्थ मुरली। बाबा ने कहा सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, लेकिन बिंदी बिंदी पहुंच जाए दादी रत्न मोहनी जी के स्तंभ पर। दादी रत्न मोहनी जी हमेशा ही बिंदु लगाओ, अशरीरी बनो, इसकी बहुत गहरी प्रैक्टिस कराया करते थे अपनी हर क्लास में। बिल्कुल, बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ। तो चलिए हम भी पहुंच जाए दादी रत्न मोहनी जी के स्तंभ पे। हम वहां पहुंचे, देखें दादी वहां खड़ी हैं, अव्यक्त रूप में मिलन मनाए अपने पूर्वजों से। आज ये हमारा पांचवा धाम, दादी रत्न मोहनी जी का स्तंभ। दादी वहां खड़ी हैं और जैसे हम वहां पहुंचे, दादी ने हमारे मस्तक पर तिलक लगाया, और तिलक लगाकर दादी हमें कह रही हैं बिंदु बन जाओ, बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ और बिंदु बाबा में समा जाओ। बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ और एक बिंदु बाबा में समा जाओ। कीवर्ड बिंदु। हम बाबा में समा जाएं और अनुभव करें जैसे बाबा भी मेरे नैनों में समा गए हैं, इन आंखों में बाबा हैं, नजरों में बाबा, मैं बाबा में समाया हुआ, बिंदु बाबा में और बिंदु बाबा मेरे नैनों में समाए हुए। कीवर्ड बिंदु। सिक्स्थ मुरली। छठवीं मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया, बाप समान बनने के लिए जीवन में चार बातें नेचुरल करनी है और दृढ़ता पूर्वक करनी है। और बाबा ने पूछा करेंगे, करेंगे कौन कौन करेंगे, हम सब करेंगे, राइट। तो बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए चार बातें जीवन में नेचुरल करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। वो कौन सी बातें? पहली बात, शुभ चिंतक। कोई कैसा भी हो लेकिन तुम्हें शुभ चिंतक बनकर रहना है। दूसरी बात, तुम्हें शुभ चिंतन करना है, व्यर्थ चिंतन नहीं, शुभ चिंतन करना है। तीसरी बात, शुभ वृत्ति। और चौथी बात, शुभ वायुमंडल। और ये परिवर्तन करने में पहले मैं, ये संकल्प करो बाबा ने कहा। तो पक्का करें बाप समान बनने के लिए ये चार बातें मुझे नेचुरल करनी है और दृढ़ता पूर्वक करनी है। पहुंच जाए बाबा के छठवें धाम में, बाबा का कमरा। देखें बाबा की ट्रांसलाइट पे चारों ओर 4S लिखे हुए हैं, 4S, राइट। इसे 4S के रूप में याद करेंगे। बाबा के रूम में, हमारे छठवें धाम में, चारों कॉर्नर में 4S, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल। चलें बाबा से प्रतिज्ञा कर लें कि बाबा हमें आपके समान बनना ही है। खड़े हो जाएं थोड़ी देर, अपने हाथ को संकल्प की मुद्रा में ले आएं और बाबा को सम्मुख देखते हुए बाबा के कमरे में बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा क्या? ये 4S, बाबा बाप समान बनने के लिए मैं सदा शुभ चिंतक बनकर रहूंगा, सदा शुभ चिंतन करूंगा, सदा शुभ वृत्ति रखूंगा और सदा शुद्ध वायुमंडल बनाने में पहले मैं करूंगा। संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें प्यारे बाबा के सम्मुख। कोई करे या ना करे, मैं करूंगा। दृढ़ प्रतिज्ञा, जैसे ये चारों एस बाबा मुझे वरदान के रूप में प्रदान कर रहे हैं, बच्चे ये भाव हाथ नीचे करें और बैठेंगे और चलेंगे सेवेंथ मुरली की ओर, जिसमें बाबा ने कहा दो बातों की लीकेज तुम्हें मेहनत कराती है, और वो दो बातें कौन सी हैं? एक पुराने संसार का आकर्षण और दूसरा पुराने संस्कार का आकर्षण। 2S बाबा के कमरे में 4S थे जिन्हें हमें धारण करना है, ये 2S हैं जिन्हें हमें छोड़ना है। दो बातें लीकेज हैं और मेहनत कराती हैं। हमें लगता है कि क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, हम इतना ज्ञान योग करते हैं, क्यों हमें अनुभूति नहीं होती, क्यों वो उड़ान नहीं भरते हम, क्यों नहीं भरते? लीकेज है। और ये दो लीकेज हैं बाबा ने कहा, पुराने संसार का आकर्षण और पुराने संस्कार का आकर्षण, ये लीकेज ही तुम्हें मेहनत कराते हैं। चले सातवें धाम की ओर, बाबा का कमरा, कुटिया, पहुंच जाए कुटिया में। देखें कुटिया के बाहर लिखा हुआ है कि अपने जूते चप्पल यहां उतार के जाएं। तो मैंने जो दो जूते और चप्पल पहने हैं, उन दो जूते चप्पल के ऊपर एक में लिखा हुआ है पुराने संसार का आकर्षण और दूसरे में लिखा है पुराने संस्कार का आकर्षण। 2S दोनों पैर पे, टू स्लीपर या टू शू जो भी आपने पहने हैं, उसे बाहर उतारें, पुराने संसार और पुराने संस्कार के आकर्षण को कुटिया के बाहर उतार के मैं अंदर प्रवेश करता हूं। और बाबा फिर वहां मुझे अभ्यास कराते हैं, किस चीज का? बच्चे अपने अनादि आदि संस्कार को याद करो। मेरे अनादि आदि संस्कार क्या हैं? पहुंच जाए थोड़ी देर के लिए अनादि स्वरूप में, देखे मेरा अनादि रूप कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। मैं भगवान के सम्मुख बैठा हूं, बिल्कुल बेदाग हीरा, अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में मेरे संस्कार वहां कितने दिव्य हैं। आदि रूप में आ जाएं। देखें आदि काल में मैं सर्व गुणों से संपन्न हूं, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, कितने दिव्य संस्कारों से संपन्न हूं, निर्दोष, स्वच्छ, निर्मल, ये मेरे संस्कार हैं। इनके स्वरूप बनकर चलें आठवीं मुरली की ओर। एट्थ मुरली में बाबा ने कहा बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो, और बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा ने कहा देह अभिमान को त्यागना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। गहरी परिभाषा बाबा ने दे, अपने देह अभिमान को, अपने मैं को त्यागना, मैंपन को त्यागना, यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो मैंपन की गिफ्ट बाबा ने कहा बाबा को दो। तो हम चलें हिस्ट्री हॉल, हमारा आठवां धाम। हम बाबा को आज एक सौगात देंगे। देखें हमने बाबा के लिए एक सौगात तैयार की है, हमने एक ड्राइंग बनाया है, और वो ड्राइंग है बकरी का, जो बकरी मैं कर रहे हैं। एक चित्र बना लें, देखें मानसिक चित्र बना लें। एक ड्राइंग मैंने बाबा को गिफ्ट देने के लिए तैयार की है, वो ड्राइंग है बकरी का जो मैं कर रही है। अब मैं हिस्ट्री हॉल में चलता हूँ, मम्मा बाबा दोनों बैठे हुए हैं, बाबा भी आज मुझे सौगात देने के लिए बैठे हैं, और उस सौगात है एक बहुत सुंदर सी गोल्डन चाबी जिसके ऊपर लिखा है बेहद की वैराग्य वृत्ति। पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल में, बाबा को मैं गिफ्ट दे रहा हूं, गिफ्ट है मैपन की, गिफ्ट है बकरी, अर्थात मैपन की सौगात मैं बाबा को अर्पित करते हुए ये संकल्प कर रहा हूं कि मैपन से हमेशा मुक्त रहूंगा। ये गिफ्ट मैंने बाबा आपको दे दी, अब ये गिफ्ट मैं वापस नहीं लूंगा। और बाबा मुझे बहुत सुंदर गोल्डन चाबी दे रहे हैं, बड़ी सी चाबी है, गोल्डन चाबी है जिस पे लिखा हुआ है बेहद की वैराग्य वृत्ति। इस मानसिक चित्र को अपने अंदर संभालें। दिया सबने बाबा को गिफ्ट, सबने मैपन की गिफ्ट दे दी। अब गिफ्ट देकर वापस तो नहीं लेंगे, नहीं ना, गिफ्ट देने के बाद वापस तो नहीं लिया जाता। आपने सुबह मुझे कोई गिफ्ट दी, हाँ, आप ओआरसी से बहुत प्यारी सी गिफ्ट मेरे लिए ले आए हैं, आपने मुझे दी, और शाम को आप बोले कि लाइए वो गिफ्ट जो मैंने दी थी मुझे वापस दीजिए, तो अच्छा नहीं लगता है ना, है ना, अपनी दी हुई गिफ्ट वापस तो नहीं ली जाती ना। तो हमने भी जो गिफ्ट बाबा को दे दी वो दे दी, अब वापस तो नहीं लेंगे, नहीं। और बाबा ने जो गिफ्ट दी बेहद की वैराग्य वृत्ति, उसे अपने अंदर संभालेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा इस बेहद की वैराग्य वृत्ति की चाबी से ही मुक्ति धाम के गेट खुलेंगे। यही चाबी है मुक्ति के गेट खोलने का, मुक्ति धाम के गेट खोलने का। और यदि संसार वालों में अब तक राग है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे अंदर वैराग्य वृत्ति नहीं आई है। इसीलिए हम पक्का करके जाएं इस भट्टी से वैराग्य वृत्ति के स्वरूप, संसार की ओर कोई आकर्षण नहीं, जो हम पीछे छोड़ के आए, पुराना संसार पुराने संस्कार के आकर्षण से मुक्त तब होंगे जब बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारे अंदर होगी। नौवीं मुरली, बाबा ने कहा बच्चे मनसा सेवा का समय फिक्स करो। हमने मनसा सेवा का समय फिक्स किया है, ये होमवर्क है। बाबा की नाइन्थ मुरली में बाबा ने अंडरलाइन कराया बच्चे मनसा सेवा का समय फिक्स करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स है, जैसे अमृत वेले का टाइम फिक्स है, वैसे अपनी दिनचर्या में मनसा सेवा के लिए भी टाइम फिक्स करो। किस किस ने टाइम फिक्स किया है मनसा सेवा के लिए? आज फिक्स करेंगे क्योंकि ये बाबा का होमवर्क है, राइट? चलें, शांति स्तंभ, हमारा नौवां धाम, पहुंच जाएं शांति स्तंभ में और पक्का करें बाबा के सामने खड़े होकर, जैसे शांति स्तंभ सारे विश्व में शांति का प्रकाश फैला रहा है, मुझे भी चैतन्य शांति स्तंभ बनना है, चैतन्य ज्ञान स्तंभ बनना है, चैतन्य शक्ति स्तंभ, चैतन्य पवित्रता का स्तंभ बनना है, बन जाएं और अनुभव करें मुझ चैतन्य शांति स्तंभ से, शक्ति स्तंभ से, पवित्रता के स्तंभ से सारे संसार में शांति पवित्रता और शक्ति की प्रकंपन फैल रहे। सारे संसार को आज इसकी आवश्यकता है, सभी दुखी हैं, परेशान हैं, पुकार रहे हैं बचाओ बचाओ। हमारी मनसा सेवा उन आत्माओं को राहत देती है, बल देती है, सहारा देती है। जाने दें अपने प्रकंपन को विश्व के कोने कोने तक, जैसे मैं एक विशाल स्तंभ के रूप में, चैतन्य शांति स्तंभ के रूप में हूं जहां जहां जा रहा हूं। सबको शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है, पवित्र प्रकंपन मिल रहे हैं। तो समय फिक्स करने के संकल्प के साथ चलें अंतिम मुरली। बाबा ने कहा, होमवर्क दिया, कभी भी किसी भी आत्मा को देखो तो उसके निजी संस्कार के रूप में देखो, निजी संस्कार के साथ देखो, उसके वर्तमान रूप के साथ ना देखो। यदि वर्तमान रूप के साथ देखते हैं तो पुरुषार्थ में व्यवधान आ जाता है, संकल्प हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया, कभी भी किसी भी आत्मा को देखो तो उसे उसके निजी संस्कार के साथ देखो। तो थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और फिर से पेयर बनाकर हम आत्मा देखते हुए उनके निजी स्वरूप को देखेंगे। चलिए एक एक पेयर बना लें। बाबा ने कहा, किसी भी कभी भी किसी को देखो आत्मा रूप में देखो, शरीर के रूप में नहीं लेकिन आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रही हूं, चमकती हुई मणि, दिव्य सितारा, ये बाबा का सुंदर हम सब के लिए प्रेरणा है कि कभी भी किसी को भी देखो आत्मा के रूप में देखो और उसके निजी संस्कार के साथ देखो कि ये शांत आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, सुखदायी आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, देह नहीं है, आत्मा है, मेरा भाई है। पक्का कर लें, मुझे इसी दृष्टि से सभी को देखना है सदा ही। एक बार पूरे हॉल पर दृष्टि डालते हुए, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए कि ये सब मेरे आत्मा भाई हैं, मस्तक पर चमकती हुई मणियां हैं, सभी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, मेरे आत्मा भाई हैं, इस रूप में देखते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। ये अभ्यास हम कहां करेंगे, हमारा दसवां धाम। कौन सा धाम है हमारा दसवां धाम? हमारा घर और हमारा सेंटर। जब भी हम अपने घर जाएंगे, घर में रहेंगे, घर के हमारे सगे संबंधी हैं, या फिर हम सेंटर जाएंगे, वहां भी सभी को किस रूप में देखेंगे? पक्का करेंगे आत्मा रूप में, क्योंकि हमारा ज्यादा कनेक्शन अपने घर और सेंटर पर रहता है, वहां हमें इस दृष्टि को ज्यादा पक्की करनी है। यदि वहां हम पक्की कर लेते हैं तो बाहर सबसे संपर्क में आते हुए हमारी वो दृष्टि स्वतः पक्की हो जाएगी। तो एक बार जस्ट रिवाइज कर ले फिर से सभी धामों को। पहला धाम डायमंड हॉल, क्या किया हमने? बाबा से मुस्कान ली, भगवान को प्रत्यक्ष करना है तो बाबा ने कहा मुस्कुराते रहो, तो सभी मुस्कुराते रहेंगे आज से। दूसरा धाम प्रकाश स्तंभ, दादी ने हमें क्या दिया? गुलदस्ता दी, गुलदस्ते पे क्या लिखा हुआ था? मन जीत जगत जीत भव। तीसरा धाम शक्ति स्तंभ। दादी जानकी जी ने हमें रक्षा सूत्र में बांधा, कहा एक के बंधन में बंधना है और सर्व बंधनों से मुक्त होना है। चौथा धाम अव्यक्त लोक। दादी गुलजार जी ने हमें क्या दिया, दुआएं दी और क्या कहा, सबको दुआएं दो, तो दुआएं लेना है, दुआएं देना है। पांचवा हमारा धाम दादी रत्न मोहिनी जी का स्तंभ। दादी जी ने हमें तिलक लगाया, बिंदी लगाई और याद दिलाया बिंदी बनो, बिंदी लगाओ और बिंदी बाबा में समा जाओ। छठवां हमारा धाम बाबा का कमरा। बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो, 4S। 4S कौन से, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल। सातवां धाम बाबा की कुटिया, कौन से दो चप्पल उतार देने हैं, 2S छोड़ना है, पुराना संसार और पुराने संस्कार का आकर्षण, राइट। आठवां धाम हिस्ट्री हॉल, बाबा को हमने क्या गिफ्ट किया, मैपन गिफ्ट की, बकरी गिफ्ट की और बाबा से क्या लिया, बेहद का वैराग्य की चाबी गिफ्ट के रूप में ली। नौवां धाम शांति स्तंभ, बाबा ने क्या कहा, मनसा सेवा का समय फिक्स करो और सबको शांति शक्ति पवित्रता के वाइब्रेशन दो। दसवां धाम हमारा घर और सेंटर, क्या करना है वहां, आत्मा देखना है और आत्मा को निजी रूप में, निजी संस्कार उसके जो हैं उस रूप में हमें देखना है। तो इस 10 धाम की यात्रा सुंदर करते हुए बाबा के आने से पूर्व इस होमवर्क को बहुत गहराई से हमें पक्का कर लेना है, ठीक है। ओम शांति। चलिए बाबा से दृष्टि लेते हुए, हाँ बाबा टोली खिला रहे हैं आपको, बच्चे बहुत अच्छी यात्रा की, बहुत अच्छा होमवर्क करने का संकल्प किया, तो मुंह मीठा कर लो, हाँ तो मुंह खोल के मुंह मीठा कर लें, हाँ बाबा मुंह मीठा करा रहे हैं। और चलें बाबा से दृष्टि लेते हुए हम संकल्प करेंगे कि बाबा हम आपके दिए होमवर्क को अवश्य पूर्ण करेंगे।
दृष्टि